साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई निर्मलता की मूरत आदरणीय निर्मला दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। दीदी की विशेषता आपने अभी इन 15 मिनटों में देखी होगी जो बैठे थे। दीदी जहां बैठती हैं वो निर्मल शीतल शांत वाइब्रेशन फैलाकर वातावरण को एकदम निर्मल कर देती है, शांत कर देती है। तभी बाबा इनको प्यार से कहते थे निर्मल आश्रम। आश्रम माना ही जहाँ स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, शांतता होती है और शीतलता। तो दीदी अपने आप में चलता फिरता एक आश्रम है। हाँ, बाबा ने प्यार से इनको ये नाम दिया था। तो दीदी मुंबई से निकली ईश्वर की अनमोल रत्न है। और जब आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मार्ग का पता चला और आप ज्ञान मार्ग में चल पड़े। और साथ साथ चूंकि आपने डॉक्टरी की तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी की और ये सेवा केंद्र खोलकर भी ये ज्ञान योग भी देना आरंभ किया। करीब 10 साल तक आपने दोनों प्रैक्टिस साथ साथ की, लेकिन आपने अनुभव किया कि जब तक मनुष्यों को आंतरिक शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो तन का कितना ही इलाज कर दिया जाए सच्चे अर्थों में शफा नहीं मिलती है। तो अपने अनुभव से आपने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान योग से मानवता की सेवा करने के लिए डेडिकेट किया। और आरंभ में आपने मुंबई में जैसे कहा सेवा केंद्र खोला। दीदी की ये भी विशेषता रही कि आपके पिताजी ने सेवा केंद्र आपको दहेज के रूप में दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि कहते हैं ना, व्यक्ति जो स्वयं जैसा होता है वैसी प्रेरणा औरों को देते हैं। तो दीदी से औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास भी जो प्रॉपर्टी आदि है कैसे हम बाबा की सेवा में लगाएं। तो कईयों की प्रॉपर्टी दीदी ने सेवार्थ बाबा के ज्ञान यज्ञ में लगाई है। तो दीदी एक चलती फिरती प्रेरणा मूर्त है। और पिछले मुंबई में सेवा देने के बाद बाबा ने इनको विदेश सेवा में भेजा। तो आरंभ में आपने लंदन में जो पहला ग्रुप गया था हमारा विदेश सेवा के लिए, उस डेलीगेशन में आप भी एक थे। तो यूं कह सकते हैं लंदन की सेवाओं का बीज डालने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ साथ मॉरिशस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में आपने आरंभ में ट्रैवलिंग की और सेवाएं की। और बाद में कुछ सालों के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हुए और इस समय वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। और जैसे कि आपको पता है, मतलब पिछले 40 वर्षों से दीदी ये पद संभाल रही है, एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं आप। और साथ साथ जैसे मनोहर दादी ने 2009 में अपना शरीर छोड़ा था, 8 या 9 में, तो उसके बाद ज्ञान सरोवर का संभालने का जिम्मा आपके कंधों पर आया। तो आज दीदी दोनों जिम्मेवारियां संभाल रही है। एशिया पैसिफिक रीजन में करीब जो 17 देश आते हैं उसकी जिम्मेवारी एक कंधे पर और दूसरे कंधे पर ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी। दोनों जिम्मेवारियों को साथ साथ लेते हुए दीदी कैसे हल्के रहते हैं और निर्मल रहते हैं। और दीदी की और एक विशेषता है, दीदी बहुत कम शब्दों में सबको समाधान भी दे देती है, संतुष्ट भी कर देती है और ऐसी औरों को भी प्रेरणा देती है। बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन, तो दीदी अपने शब्दों का भी ख्याल रखती है कि बहुत कम शब्द बोले, बहुत कम संकल्प में कारोबार ऑटोमेटिक चलता रहे, तो दीदी की ऐसी बहुत विशेषता है। तो आज दीदी ने अपने इस स्टेज पर जो पहुंचे, कैसे उन्होंने इस ज्ञान योग को अपने जीवन में ढाला है, अपने अनुभव से आप सबके सामने बातें रखेंगी कि कैसे हम स्व उन्नति में तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वहां तक हम पहुंचे। दीदी जी
ओम शम। हम सभी गॉडली स्टूडेंट है, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला एक, सब उम्र के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, परंतु रिजल्ट में नंबर वार है पुरुषार्थ अनुसार। तो इसलिए हमें यदि आगे नंबर लेना है तो पुरुषार्थ पे इतना करना चाहिए। तो हमें अपने सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो बाबा की जो श्रीमत है, सबसे पहले कि सवेरे सवेरे अमृत वेला करो, तो इसलिए स्व उन्नति के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा अमृत वेला पावरफुल हो। सिर्फ आदत के वश या बाबा कहते इसलिए नहीं बैठना है, परंतु हमें इस समय बाबा से बहुत कुछ लेना है, ये बुद्धि में रखकर बैठना है कि हमें लक्ष्य रखना है अमृत वेले भी, कि आज बाबा से मुझे कौन सी शक्ति लेनी है, कौन सा अनुभव करना है। और सिर्फ ज्ञान का मंथन नहीं करना है, वो तो पहली स्टेज हो गई, परंतु अभी क्या करना है, उसके बाद है बाबा से बातचीत करना, फिर तीसरी स्टेज है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना, और जो फाइनल स्टेज है बिंदु बनकर बिंदु को याद करना। तो आपने भट्टी में तो ये अनुभव किया होगा, बिंदु बनकर बिंदु को याद करना, और कोई याद ना आए, क्योंकि गाते रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो वो प्रैक्टिकल में लाना है ना। तो ये देखना है कि मेरी बुद्धि में और कोई बात ना आए, कोई व्यक्ति ना आए, कोई सेवा का भी संकल्प ना आए, बस बाबा की याद में लीन हो जाना है। और साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल पर भी ध्यान देना है कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी हम बाबा की याद में रहें। तो जैसे मधुबन में घंटे घंटे पर ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, ठीक है ना, घंटे घंटे एक मिनट, दो दो घंटे दो दो मिनट, तो वो टाइम टेबल अपने घर में भी रखना है। ऑफिस में है, नौकरी धंधे में है, उनको सोचना है अपना टाइम कैसे निकालना है, परंतु कोशिश करनी है कि दिन में बाबा को बीच बीच में याद करना है। रात को सोने के पहले याद करके सोना है, शाम को आधा घंटा याद जरूर में बैठना है, कोई भी टाइम निकालो, क्योंकि सेंटरों पर तो फिक्स टाइम होता है 6:30 से 7 या 7 से 7:30 फिक्स टाइम होता है, परंतु घरों में आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं कि ये टाइम हमको आधा घंटा याद करना है। भोजन बनाते समय याद रखना है, हम कर्मयोगी हैं तो इसलिए भोजन समय याद में बनाओ और भोजन खाते समय भी बाबा की याद में खाना है। तो इसलिए अपना योगी का चार्ट ठीक रखना है। दूसरा, मुरली रोज पढ़नी है या सुननी है, क्योंकि सेंटर पर तो शायद सब ना भी जा सके, परंतु घर में तो नियम रख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी बाबा की मुरली, मधुबन की मुरली आती है, और कईयों के पास मोबाइल पर भी ले सकते हैं, तो इसलिए रोज की मुरली पढ़नी है, विचार सागर मंथन करना है, उसमें से पॉइंट्स नोट करनी है कि आज बाबा ने ज्ञान की क्या नई पॉइंट दी, योग की कौन सी नई पॉइंट दी, धारणा की कौन सी नई पॉइंट दी, और फिर जो सवेरे मुरली पढ़ी है सुनी है उस पर फिर ना सिर्फ मनन चिंतन करना है, धारण करना है। और धारणा की तो कई बातें हैं जो बाबा रोज सुनाते हैं, विशेष व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म ना हो, व्यर्थ भी ना हो, साधारण भी ना हो, श्रेष्ठ हो। इसलिए परचिंतन, परमत, परदर्शन ना हो, संकल्प बोल कर्म सब पर अपना ध्यान रहे कि कोई भी साधारण भी ना हो, व्यर्थ की तो बात छोड़ो, साधारण भी ना हो, नेगेटिव भी ना हो, श्रेष्ठ ही हो, क्योंकि हमें श्रेष्ठ बनना है देवता। और लक्ष्य हमारा सदैव सामने हो, लक्ष्य है हमारा लक्ष्मी नारायण, बाप समान बनना, तो बाबा को हर बात में फॉलो करो, जो भी संकल्प चले देखो बाप समान है, बोल बाप समान है, कर्म बाप समान है, तो मम्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। और धारणा में बाबा कहते हैं देही अभिमानी होकर रहो, तो पूरा टेंशन रखना है, क्योंकि ज्ञान मार्ग ये है अटेंशन, सिर्फ सुनना नहीं सुनाना नहीं, अपने पर अटेंशन। और फरिश्ता स्टेज हो तो फरिश्ता स्टेज माना फरिश्ता कौन बन सकता है, जो डबल लाइट है वो उड़ता रहेगा ना, जो हैवी है वो नहीं उड़ सकता, देहभान में है उड़ नहीं सकेगा। तो ज्ञान योग की हमारी पंख मजबूत हो, उमंग उत्साह हो, उड़ते रहेंगे तो समस्याएं सब नीचे रह जाएंगे, विघ्नों को सहज पार कर सकेंगे। और उड़ने के लिए नष्टो मोहा भी बनना पड़े, नहीं तो मोह हमको खींचेगा, योग में रहने नहीं देंगे, उड़ने नहीं देंगे। तो न व्यक्तियों में मोह हो न वस्तु में मोह हो। पुरुषार्थ में दृढ़ता हो, निश्चय हो, मुझे करना ही है, ऐसे नहीं सोचूंगा करूंगा देखूंगा, नहीं, करना ही है। और साथ साथ निश्चय भी रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे हिम्मत रखनी है, बाबा की मदद मिलेंगे। हमारी स्थिति ऐसी हो जो परिस्थिति हिलावे नहीं, ऊंची स्थिति पर रहे, और उसके लिए निमित्त भाव हो। करान करावनहार बाबा है, हम निमित्त है, तो जिम्मेवारी निभाते हुए भी हम हल्के रहेंगे। निर्माण रहना है, मान शान की आशा न हो। नव निर्माण का कार्य करते रहना है, क्योंकि हमारा काम है स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। तो ये याद रहे कि हमें नव निर्माण का कार्य करना है और निर्वाण धाम में जाने का पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके साइलेंस में रहें, वाणी से परे कम बोलना है और सार रूप में बोलना है। कहते हैं कम बोलो धीरे बोलो और सोच समझ कर बोलना है। बहानेबाजी ना हो। कई बार क्या होता है, हम बहाना निकालते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है, नहीं कर पाते हैं तो बहाना निकालते हैं, फलाने ने ये किया इसलिए ऐसे था, फलानी परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये नहीं, बहाना ना हो बिल्कुल, क्योंकि जब दृढ़ता है मुझे करना ही है तो बहाना क्यों होगा। और जो करना है अभी अभी करना है। बाबा ने क्या स्लोगन दिया है, कल करना है सो आज करो, आज करना है अभी करना, कल कल करते काल खा जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं सोचो कि कल करेंगे, क्योंकि क्या था, मैं बंबई में थी ना 1960s में, तो माताएं कहती थी अभी हमारे बच्चे छोटे हैं ना, हम सेवा में नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे ना सेवा में जाएंगे। फिर जब आई 10-15 साल के बाद तो कहते हैं बहन जी क्या करें, अभी ट्रेन में बहुत रश हो जाता है, हम अभी बूढ़े हो गए, कोई धक्का मारेगा हम गिर जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। बस में भी लंबी क्यू होती है, टैक्सी खर्च करके तो आ नहीं सकते हैं, तो आना ही मुश्किल है। और कहेंगी बेटा बहू दोनों काम करते हैं, बच्चों को कौन संभालेगा, इसलिए हम निकल नहीं सकते हैं। तो क्या है, उन्होंने सोचा हम थोड़े सालों के बाद करेंगे, फिर थोड़े साल के बाद दूसरी परिस्थिति आ जाएंगी। और दिन प्रतिदिन आप जानते हैं परिस्थितियां तो विकट होती ही जाती है, तो इसलिए करना है, करना ही है, मुझे करना है, मैं करूंगी तो मैं पाऊंगी, दूसरा करेगा तो उसको फल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कारण नहीं बताओ, निवारण करो। पेपर आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन हमें याद रखना है विजय हमारा है, पार करके ही छोड़ना है, हमको पास होना है पेपर में। तो जितना बाबा के पास रहेंगे तो पेपर में पास हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पास रहना है, पास करना है और पास को पास करना है, बीती बात को बिंदु लगाओ, पास की बातों को सोचो नहीं, उसमें समय नहीं गवाओ, क्वेश्चन में समय नहीं गवाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सवाल पूछते हैं, क्या करें, कैसे करें, कब करें, तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल होके प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, कब करें अब करो, कैसे नहीं कहो ऐसे करना है। तो इसलिए सवाल ना हो, हम मास्टर दाता है, देवता माना देने वाला, तो हम मास्टर दाता है, हमको देते रहना है, मांगता नहीं है। तो बाबा कहते हैं भिखारी नहीं हो, बेफिक्र बादशाह हो, तो इसलिए मांगना नहीं है या इच्छा नहीं रखनी है, नाम मान शान मदद इच्छा नहीं रखो। और बाबा से लो और औरों को देते रहो, और बाबा से भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी है। बाबा हमको खजाना देता है, सूक्ष्म खजाना, वो लेते रहो, योग द्वारा अपने आप को लेना है, बाबा नहीं देगा। तो बाबा से योग द्वारा सूक्ष्म खजाने लो और औरों को बांटो। हमें और किसी को नहीं देखना है। क्या है, कई बार क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा फलाना है 25 साल वाला ज्ञान में है, गुस्सा करता है, मुझे गुस्सा आ गया तो क्या हुआ, तो औरों को नहीं देखना है, न औरों से भेंट करके दुखी भी होना है, सम्मान की भी कमी ना हो। कई बार क्या है, भेंट करके हमारे सम्मान की कमी कर देते हैं, तो ना तो औरों को देखकर अपने सम्मान में कमी करो, ना तो औरों को देखकर अपनी कमियों को चला लो। हमें देखना है मम्मा बाबा को, फॉलो मदर फादर कहते हैं, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं कहते हैं। और मम्मा ने क्यों नंबर वन पाया, मम्मा की क्या विशेषता थी कि गलती एक बार करके दूसरी बार नहीं करना। एक बार हो गई उससे सीख लो, दोबारा वो गलती ना हो, ये ध्यान रखना है। तो हमारी बोल चाल साधारण न हो, अलौकिक हो। संबंध भी सबसे अलौकिक, लौकिक संबंध को अलौकिक समझ बनाओ। भले पति को आप भाई नहीं कहो, परंतु बुद्धि में तो ये रहे ना कि ये हमारा आत्मिक भाई है। तो लौकिक बोलने में भले लौकिक रीति से बोलो चलो, परंतु आंतरिक अलौकिक संबंध रहे। तो हमारा पूरा टेंशन रहे, चेकिंग करते रहे, रात को चार्ट जरूर लिखना है। उन्नति के लिए चार्ट जरूरी है, चेक करो क्या सारे दिन में कैसा योग रहा, कौन सी पॉइंट ज्ञान की, मनन मंथन की, किस विशेष बात की धारणा की, कोई विकार के वशीभूत तो नहीं हुई, कितनों को सुख दिया, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करके मैंने कितनों को सुख दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो ये अपना चार्ट रखो और रात को तो चेक करो, परंतु सारे दिन में भी चेकिंग करते रहो अपनी, और चेकिंग करके उसको फौरन चेंज करो। चेंज करना है याद के बल से और दृढ़ता से कि मुझे अभी ये कमजोरी को नहीं चलने देना है, ये विकार अपने में नहीं रहने देना है। तो ये दृढ़ता होंगी तो छोड़ सकेंगे, ऐसे नहीं कि भाई ये तो छोटी सी कमी है ना, नहीं, अभी तो हम नए हैं, अभी तो हम गृहस्थी है, हमको लौकिक संबंधियों में रहना पड़ता है, जो संबंधी ईर्ष्या वाले हैं, गुस्से वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, ये बहाना ना हो। मुझे निंदा करने वाले को भी मित्र बनाना है, गाली देने वाले को गले लगाना है, ईर्ष्यावैर भाव रखने वालों से प्रेम भाव रखना है। मुझे क्या करना है, वो लोग तो करते हैं, उन्हों को तो हीरो एक्टर नहीं बनना है, मुझे हीरो एक्टर बनना है। क्या है कि कई बार अज्ञानियों को तो हम चला लेते हैं, पर ज्ञानियों में वीकनेस देखते हैं तो हमारे संकल्प चलते हैं कि ज्ञान में होते हुए ऐसे करते हैं, ये नहीं। हर एक के संस्कार अपने अपने, हर एक अपना अपना टाइम लेता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखें और हमारी चलन उन जैसी ना हो। हमारी चलन दैवी हो। और बाबा की श्रीमत पर पक्का रहना है। विशेष खान पान, क्योंकि आप लोग परिवार में रहते हो तो परिवार में थोड़ी मुश्किल आती है ना, या तो घर वाले सब वेजिटेरियन नहीं है तो कोशिश करके नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाओ। धीरे धीरे प्यार से उन्हों को समझाओ, घर वालों को, उनको भी वेजिटेरियन बनाओ या उनको नॉन वेज खाना है तो बाहर जाके खा ले। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार में, सामाजिक व्यवहार में आना जाना पड़ता है। माँ बाप है, भाई बहन है, घर वाले हैं, ज्ञान में नहीं है, उनके पास आना जाना होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, खाना पकाया हुआ नहीं खाओ, फल खा लो, दूध दही छाछ ले लो, पकाया हुआ नहीं खाओ, या तो अपने हाथ से वहां जाके पकाओ और सबको खिलाओ। विदेश में तो ये बहुत अच्छा है, कोई कहेगा मैं आपके पास आके खाना बनाएंगी सबके लिए तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके पास खाना पकाने का टाइम नहीं है। इंडिया में थोड़ा कहेंगे हमारे पास आए हैं, खाना नहीं खाएंगे क्या? तो कभी कभी जाना होता है तो बाबा कहते हैं माना बता सकते हैं कि आज हमारा उपवास है, एक टाइम है, मैं सोमवार करती हूँ, क्योंकि कोई भी दिन है भारत में तो एक टाइम खा सकते हैं। तो कभी कभी जाना हो तो बहाना बता सकते हैं, पर रोज जाना होता है तो बहाना भी नहीं बता सकते हैं। तो थोड़ा उनको युक्ति से, प्यार से समझाना होता है कि हम स्वयं पाकी हैं, ब्राह्मण हैं, अपना पकाया हुआ खाते हैं। तो जैसे भक्ति में भी क्या करते हैं ब्राह्मण, क्या करते हैं अपने से नीच कूट के ब्राह्मण का भी नहीं खाएंगे। सारस्वत है, ऊंचे तो ऊंच कूट के, तो छोटे ब्राह्मण जो पूजा पाठ करने वाले ऐसे ब्राह्मणों का पकाया हुआ नहीं खाते थे, आगे तो नहीं खाते थे, अभी तो मालूम नहीं, सब खा लेते होंगे। तो इसलिए खान पान में थोड़ी परहेज रखनी है, क्योंकि विदेश में तो थोड़े परिवार वाले समझ जाते हैं, कहते हैं चलो नहीं खाना है कोई बात नहीं, हमारे पास एक बहन थी पार्लियामेंट हाउस में काम करती थी पार्लियामेंटेरियन के साथ एमपी के साथ, तो उसको ही पार्टी अरेंज करनी पड़ती थी। तो नेचुरली है दूसरों के लिए पार्टी अरेंज करती थी और खुद के लिए फ्रूट और सलाद ऑर्डर करती थी। और क्रिसमस की समझो पार्टी होती थी तो वहां तो ऐसे करते हैं ब्रिंग योर ओन डिश, कि अपनी एक डिश ले आओ। तो वो दूसरों की डिश नहीं खाती थी, खुद की पकाई हुई ले जाती थी और सबको अच्छी लगती थी और सबके साथ फ्रूट खाती थी। तो वहां फ्रूट में क्या करते हैं, जब फ्रूट की डिश देते हैं ना, तो कोई लाल फल है, कोई हरा फल है, कोई सफेद फल है, कोई पीला फल है, ऐसे अरेंज करके देते हैं। तो लोग कहें हाँ तुम्हारे तो बहुत फल अच्छा है, और भी कहें कि तुम्हारा खाना अच्छा है। और वो भी घर से पका के जाती थी खाना, तो सब अच्छा अच्छा करके खा जाते थे। कई लोग ऑफिस में भी टिफिन ले जाते हैं, तो बाकी तो सब शेयर करके खाते हैं। वो अपना दूसरों को देती थी, दूसरों का नहीं खाती थी। तो क्या है कि दूसरों को उनकी सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, कहती थी हमारे हमको भी दो हमको भी दो, तो ज्यादा बना के ले जाती थी। तो इसी रीत से क्या है कि हमको औरों से प्यार से युक्ति से चलना है, इससे उनको ना लगे कि हमको शूद्र समझते हो क्या, हम नीची कास्ट के है जो हमारे हाथ का नहीं खाते हैं। और माँ बाप तो कहेंगे सारी उम्र हमने खिलाया अभी क्या नखरा करती हो। तो जरा प्यार से समझाना होता है। और बाबा की आज्ञाकारी रहना है, वफादार फरमान बरदार। तो जैसे वफादार स्त्री होती है क्या करती है, पति के सिवाय उसकी बुद्धि किसी में नहीं जाती। इसी रीत से हमारी बुद्धि भी एक बाप के सिवाय किसी में ना जाए। वैसे भी हम कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये देखना है कि भल सबके साथ सहयोग से काम करें, परंतु किसी से प्रभावित ना हो, किसी के प्रति आकर्षण ना हो, सूक्ष्म में भी कोई विकार ना हो। तो बाबा आजकल यही कहते हैं, अपना संकल्प समय बोल कर्म संबंध, उसकी वैल्यू समझो। लास्ट मुरली भी थी कि देखो आपके दर्शन के लिए, एक सेकंड के दर्शन के लिए आपके भगत तड़पते हैं, तो समय की कितनी वैल्यू है, आपकी दृष्टि की कितनी वैल्यू है। आपके बोल की कितनी वैल्यू है, या एक एक बोल जैसे वरदानी मुहूर्त हो जाते हैं। तो इसलिए समर्थ करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो जितनी हमारी तपस्या पावरफुल होंगी, तपस्या किस आधार पर रहेंगी, वैराग्य होगा तो त्याग होगा, त्याग होगा तपस्या होंगे। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य हो, किसी भी चीज में ममत्व ना हो, आकर्षण ना हो, क्योंकि आजकल तो बहुत सब नई इन्वेंशन में निकलती है। तो लौकिक लाइफ में तो जो लौकिक में रहते हैं, लौकिक में तो क्या करेंगे कि देखेंगे कौन सी नई फैशन है, कौन सा नया कलर है। अभी ब्राह्मणों को तो ये नहीं रहा, परंतु फिर भी ब्राह्मणों में कभी कभी ऐसे रहते हैं कि हम देखें इसकी साड़ी कैसी है, कहाँ से ली है, कितने की है, कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका ड्रेस अच्छा है, कहाँ से लिया है, कितने में लिया है। और आजकल ब्राह्मणों में फैशन है बैच की। शांतिवन में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, नए 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 प्रकार के बैज मिलते रहते हैं, तो आकर्षण होती है ना। पुराने कितने भी होंगे तो भी नए खरीद लेंगे। फोन की कि आजकल मोबाइल फोन है, आईफोन है, तो ऐसे होगा हमारा फोन भी ऐसा हो जो उसमें ईमेल भी निकले, फोटो भी निकले, तो इच्छा रहती है। तो ये भी क्या हुआ, सूक्ष्म लोभ, स्थूल वस्तु की, मान शान की इच्छा रहती है कि हमको मान मिले, सब हमारा रिस्पेक्ट रखें, सेवा का चांस मिले, ये भी इच्छा रहती है ना। कि सेवा का चांस मिले, क्या होता है कि सेंटर पर तो थोड़े जिज्ञासु आते हैं और सेंटर की बहने होती है बिजी रहती है, बाहर वालों को चांस नहीं मिलता है। तो कभी कभी होता है कि हमको चांस नहीं मिलता है, स्टेज पर आने का चांस नहीं मिलता है, आदि आदि। तो ये सूक्ष्म कोई इच्छा ना हो। आकर्षण भी ना हो, प्रभावित भी नहीं होना। क्या होता है कभी कभी हम प्रभावित हो जाते हैं ना, फलाना बहुत अच्छा योग कराता है, वो योग कराता है, हमारा एकदम योग लग जाता है, हमको लाइट का साक्षात्कार होता है। तो किससे प्रभावित हो गए, उस व्यक्ति से। कराने वाला कौन साक्षात्कार, बाबा। तो बाबा को भूलकर उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना है, चाहे कितना अच्छा क्लास कराते हैं, क्या चाहे कितना अच्छा भाषण करते हैं, चाहे कितना अच्छा योग कराते हैं। तो क्या है, उसकी कदर करनी है, अप्रिशिएट करना है कि ये अच्छा है। परंतु प्रभावित होना दावो, क्योंकि प्रभावित होना ये भी सूक्ष्म विकार है। आकर्षण होना, प्रभावित होना, इच्छा होना, सुस्ती ना हो, ये भी। जैसे बाबा कहते हैं, बड़े को तो छोड़ दिया पर छोटे छोटे रह जाते हैं, सुस्ती आती है। मैं रोज क्या अमृत वेले उठना है, कल रात को तो देरी से सोए ना, अभी सारा दिन तो योग करना ही है, हम तो कर्म योगी है, उठना क्या है, उठकर बैठना क्यों है, सुस्ती कभी आ जाती है। तो ये ना हो। देखो मम्मा का मिसाल है ना, मम्मा 12-1 बजे सोती थी तो भी अपना 2 बजे उठ जाती थी। तो एक बारी मम्मा को मिलने मिनिस्टर आया, 12 बज गया, 2 बजे उठ गई, रमेश भाई के घर रहती थी। तो रमेश भाई ने कहा, मम्मा आप तो 12 बजे सोई और 2 बजे उठ गई। मम्मा कहते हैं, यदि मिनिस्टर को मिलने के लिए इतना जाग सकती हूँ तो 2 बजे तो मेरी अपने प्रियतम के साथ अपॉइंटमेंट है, बाबा के साथ, वो कैसे मैं मिस कर सकती हूँ। तो इसी रीत से जब हम लक्ष्य रखेंगे कि सवेरे अमृत वेला हमारी बाबा के साथ अपॉइंटमेंट है, किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, तो बाबा मदद भी करेगा। तो पुराना स्वभाव संस्कार बिल्कुल ना रहे। कभी ऐसे नहीं कहो मेरी तो ये आदत है ना, कभी कभी नहीं, हम जोश से बोलते हैं, फोर्स से बोलते हैं, तो कोई कहेगा कि ऐसा क्यों बोलते हो, गुस्सा क्यों करते हो, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरी आदत है ना। तो पुरानी आदत को अपनी आदत नहीं बनाओ। हमको बाबा कहते हैं धीरे बोलो, मधुर बोलो, कम बोलो। कोई कहेगा रात को तो हमको जागने का कितना भी कहो हम जाग लेंगे, पर सवेरे उठने की बात हमको नहीं करो, ये हमारी आदत नहीं है बचपन से। हम रात को देरी से सो सकते हैं, जल्दी उठ नहीं सकते। तो ये पुरानी आदत को अपनी आदत नहीं बनाना है, पुराने स्वभाव संस्कार को अपना संस्कार नहीं बनना। हम मरजीवा है ना, मर गए, शूद्र पने से मर गए, अभी ब्राह्मण बन गए, सब कुछ नया। हमेशा उमंग उल्लास में रहेंगे, माया से बेहोश नहीं होना है। बाबा के आदेश पर चलना है और बाबा का संदेश देते रहना है और स्वदेश सामने रखना है। आदेश पर चलना है, संदेश देना है और स्वदेश सामने रखना है। परम धाम हमेशा बुद्धि में हो। कोई कितना भी विघन रूप बने, निंदा करे, ग्लानी करे, आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी चोरी करे, आपसे ठगी करे, उसके साथ क्या है, शुभ भावना मैत्री भावना से रहना है। दुश्मन नहीं समझना है। हमारी दुश्मन सिर्फ माया, हमारा मित्र सिर्फ बाबा, बाकी सबसे स्नेह का संबंध हो, सबको सहयोग दो, किसी का आधार नहीं लेना है। क्योंकि आधार लेने से क्या होगा, मुंह पड़ जाएगा, तो मुंह भी तो बड़ी माया है, इसलिए सहयोग दो, सहयोग लो, पर ना किसी को आधारित बनाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, माताएं लड़कों को और पति को बहुत आधारित बना देती, पति बेचारा चाय भी नहीं बनाना जानता है, चाय बनाना है तो भी पत्नी के ऊपर आधार लेना पड़ता है, खाना भी नहीं पका सकता है। एक दिन पत्नी नहीं है तो क्या करें, कैसे करेंगे, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को बचपन से ही खाना पकाना सिखाना है, ताकि बड़े हो तो कभी जरूरत है पका लेवे। इसलिए सेवा करो, परंतु ऐसे नहीं कि उनको डिपेंडेंट बनाओ। विदेश में तो बहुत अच्छी रीत से करते हैं, सब अपनी ड्यूटी डिवाइड कर लेते हैं। पत्नी भी नौकरी करती है, पति भी नौकरी करता है, तो पत्नी आकर खाना पकाएंगी तो पति बर्तन सफाई करेगा, बच्चे हैं बर्तन पोछेंगे, बच्चों को भी घर सफाई करना है, उसकी ड्यूटी है हफ्ते में एक दो दिन। रोज तो उनको घर सफाई नहीं करनी होती है ना, खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, तो हफ्ते में दो बारी घर सफाई करनी होती है। बच्चों को सिखा देते हैं, बच्चे अपना ही सब कुछ तैयारी करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे भी डिपेंडेंट नहीं रहते। तो इसलिए सबको सहयोग दो, ऐसे नहीं कि रोज उनको खाना पकाने का कहो, आप घर में बैठे हो तो उनकी जरूर ये इच्छा रहेंगी कि घर में बैठे हो तो रात को घर में आते हैं पुरुष तो खाना तैयार मिले, या बच्चे घर में आए खाना मिले। तो ये तो समझो बाबा कहते हैं केयरफुल भी रहना है, सब संभाल भी करनी है, परंतु उनको आधारित नहीं बनाना है। नहीं तो उनका भी मोह पड़ जाता है माँ में या स्त्री में, तो इसलिए ये नहीं करो। और हमेशा ये एम रखना है कि हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, बाबा से शक्ति लेकर सब शक्तियां अपने में भरनी है। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती हूं या मुझे ये सताता है, क्योंकि विकारों की ऑपोजिट शक्ति भर ली तो क्या हो जाएगा, विकार भाग जाएंगे ना। लोभ है, संतुष्टता की शक्ति भरी तो लोभ कैसे रहेगा। अहम है, निर्माण बनेंगे, नम्र बनेंगे, अहम कैसे रहेगा। पवित्रता धारण करेंगे, काम विकार कैसे धारण रहेगा। प्रेम होगा तो वैर भाव नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, घृणा नहीं होगी। तो इसलिए शक्तियां धारण करो तो विकार ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। तो लक्ष्य जो है सर्वगुण संपन्न बनना, संपूर्ण निर्विकारी और 16 कला संपन्न, तो उस लक्ष्य को धारण करना है। सब कलाएं भी हो अपने में, लिखने की कला, बोलने की कला, कारोबार चलाने की कला, पेंटिंग, सब कला, 16 कला बनना है ना संपन्न। तो इस रीत से मैं ये नहीं कर सकती हूं, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सीखने से सब कुछ आ जा सकता है। ओम शांति।
तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अनुभव आप सबके सामने रखे, और अवश्य ही आप भी इस
को फॉलो करके स्वोन्नति में आगे बढ़ेंगे। पुनः पुनः दीदी का धन्यवाद। ओम शांति।